Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Deranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ka tisra adhyay biswa mantra chal raha tha. Uchcharan kare biswa mantra. अनोरणियान महतो महियान आत्मा गुहायां निहितोस्य जन्तुः तमा क्रतुं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमीशम् अनोह अनियान महता महियान आत्मा गुहायां निहितः अस्य जन्तोः तम अक्रतुम पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादात् महिमानं ईशम्। आत्मज्ञान से शोक निवृत्ति का निरूपण कल हम लोग देख ही रहे थे। सामान्य अर्थ अनुहो अनियान महता महियान, कौन? आत्मा। जो आत्मा है वो कैसा है? अणु से अणु मनी सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात अपंचीकृत पंच महाभूत का सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कार्य है वह महतो महियान पंचीकृत पंच महाभूत का 14 ब्रह्मांड तक विराट जो रूप है विभु, ये महियान इस प्रकार जो आत्मा है अर्थात ये आत्मा माया को विषय को उपाधि को लेकर ही ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान होता है। रहता कहाँ है उसका पता कहाँ है? अस्य जन्तोः गुहायां निहितः। अस्य जन्तोः अर्थात अस्य मनि सर्वनाम है, इस जंतु मने प्राणी, इस प्राणी के मने एक वचन दे रहे अस्य जंतु एक वचन है, तो इस प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निहित मने अच्छी प्रकार से वो स्थित है। बाहर स्थित है उपाधि रूप से, भीतर स्थित है निरुपाधिक स्वरूप से, दोनों उसके स्वरूप है। बाहर जो स्वरूप दिखाई देगा चाहे सूक्ष्म सूक्ष्म लीजिएगा महान से महान, ये उपाधि को लेकर है और उपाधि रहित निर्विशेष स्वरूप से अच्छी प्रकार से स्थित कहां है? गुफा में, हृदय रूपी गुफा में जहां अंगुष्ठ मात्र हृदय है उसमें उसका निवास स्थान है। उसको कौन देख सकता है, कब देख सकता है, उसके बारे में बताते हैं। देखने का साधन क्या है? धातु प्रसादात। धातु प्रसादात, धातु का अर्थ परमात्मा भी है और इंद्रिय भी है, मानी उस परमात्मा की कृपा से अथवा अपने इंद्रियों की प्रसन्नता से। तम आक्रतुम उस आत्मा के लिए, तम आक्रतुम ईशम ईश्वर का विशेषण देते हैं, तम अकर्तुम ईशम। कर्तो और अकर्तो, कर्तो का अर्थ होता है कर्ता भोक्ता संकल्प विकल्प आदि सब करने वाला, ये लोक के लिए परलोक के लिए कामना करने वाला उसको बोलते हैं कर्तो। और अकर्तो सब प्रकार की कामना शून्य हो जाता है, ऐसा अकर्तुम ईशम और उस महिमान उसकी महिमा को देखता है। वो परमात्मा ही अकर्तु है, क्यों? उसमें कोई संकल्प आदि नहीं रहते हैं, अकर्तु है उसका स्वरूप। और ऐसे इसको ईश्वर की महिमा को साधक देखता है और देखने के बाद में उसका स्वरूप क्या होता है? वीत शोक। एक बार उसका दर्शन कर लिया कि तुरंत जो शोक हो रहा था संसार का, भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान काल का, ये सब प्रकार से शोक से वह मुक्त हो जाता है। इसका मतलब हो गया उसको देखने के बाद में ही, देखना कहिए अथवा दर्शन कहिए अथवा ज्ञान कहिए, तरति शोकम आत्मवित। तो आत्मवित तो आत्मा को जानने वाला, आत्मा को देखने वाला शोक से पार हो जाता है, अथवा वित शोक हो जाता है, ये बताया। भाष्य में हम लोग देख ही रहते हैं, अनो अनियान अर्थात अनु हो सूक्ष्मादापि अनियान अनुतरह महतः मनि महत परिमाणात महियान महत्तर अर्थात जो परिमाण होते हैं, कल हम लोग देख ही रहे थे, जो नापने योग्य मीटर किलो कोश ये सब परिमाण हैं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म परिमाण से भी वह सूक्ष्म है और महान परिमाण से भी वह महत्तर है। सच आत्मा, वह आत्मा इस प्रकार का है, महान और महान से महान सूक्ष्म। अस्य जंतो हो, जंतो का अर्थ करते हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य, मैंने प्राणी मात्र को जंतु शब्द का प्रयोग किया, और इस प्राणी मात्र के गुहायाम, गुहायाम का अर्थ करते हृदय में, और हृदय कैसा है पहले भी बताया, अंगुष्ठ मात्र आदि अर्थात, इसलिए बताया कि वहां उसकी अभिव्यक्ति होती है। जो अभिव्यक्ति होती है किस रूप से, निर्विषय रूप से होती है, तो वहां स्थित है, मतलब जो व्यक्ति निर्विषय हो जाता है वही उसका दर्शन कर सकता है। निर्विषय का अर्थ ही होता है कि सभी प्रकार की कामना आदि रहित होने वाला ही कामना रहित आत्मा को देख सकता है। निहित है, स्थित है, कैसा स्थित है, आत्मभूत स्थिति, आत्मभूत, आत्मभूत का अर्थ है कि कोई उसको विशेषण नहीं है। विशेष क्या हो जाता है आत्मा को, नाम रूपादि तो विषय है, नाम रूपादि है, फिर वर्ण आदि जितने भी है, चार वर्ण आदि रंग आदि ये सब वह विशेष है उस आत्मा की उपाधि को लेकर। और आत्मभूत हृदय रूपी गुफा में रहता है अर्थात निर्विषय रूप से रहता है, ये बताए। तम आत्मानम, आत्मा का स्वरूप, उस आत्मा को अकर्तुम, एक एक विशेषण देते हो, आत्मानम ने आत्मा को अकर्तुम, अकर्तुम कर्तु का अर्थ बताए ना, कर्तु मने कर्ता भोक्ता है, और कर्तु का अर्थ होता है यज्ञ आदि, यज्ञ आदि करते हुए उत्तम फल भोगने की कामना रहती है उसको भी कर्तु शब्द बोला जाता, यज्ञ आदि करने वाला कर्तु, उत्तम फल आदि की कामना करने वाला, और उत्तम आदि किसी भी फल की कामना न करने वाला उसी को यहां देते हैं विषय भोग संकल्प रहित आत्मना, मैंने आत्मा के, क्योंकि आत्मा में, जीवात्मा में अनंत जन्म के संस्कार होते हैं, वासना होते हैं, उनके द्वारा विषयों की कामना है, अनेक प्रकार का संकल्प आदि करता रहता है, लेकिन जो आत्मा विषय भोग संकल्प रहित होता है ऐसा जो आत्मा है, उस आत्मा की महिमा, क्या महिमा हो सकती है, महिमानम कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम, वो आत्मा ही वो ईश्वर है, एक एक शब्द जो हृदय गुफा में आत्म रूप से स्थित है वह कर्तु है अर्थात संकल्प आदि से रहित ऐसा आत्मा है, उस आत्मा की क्या महिमा है, हमारी महिमा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, यह अपनी महिमा, मैंने अपने मतलब अपने शरीरों की महिमा, और उस आत्मा की क्या महिमा है, कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम, ये शरीर को लेकर, शरीर आदि को कर्म निमित्त वृद्धि क्षय लगा हुआ है अर्थात छह विकार लगे हुए, जो छह विकार आत्मा को लगे हुए है, जीवात्मा को, किसको लेकर, उसके कर्म को लेकर ही लगे हुए, लेकिन उस आत्मा को जो परमात्मा है, जो हृदय गुफा में निर्विषय रूप से स्थित है, उसकी यही महिमा है कि उसमें कर्म निमित्त वृद्धि क्षय आदि कोई भी परिणाम नहीं होता है। गीता में दूसरा अध्याय में आत्मा का सुंदर वर्णन किया हुआ है, कोई परिणाम आदि वहां नहीं है। इस प्रकार जो आत्मा की महिमा है, ऐसे महिमा वाला कौन है, ईश्वर है, ऐसा महिमा वाला न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भवितवान भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमान्ये शरीरे। इसको बोलते हैं महिमा, कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम। इस प्रकार आत्मा की महिमा। फिर इस प्रकार जो आत्मा है उसी को ईश्वर बोलते हैं। इस प्रकार की जो आत्मा की महिमा है उस आत्मा को ही क्या बोला जाएगा? ईश्वर। ऐसे ईशम पश्यति, ऐसे ईश्वर को देखता है कौन? साधक आदि देखता है। और देखने पर कैसा देखता है? देखने की क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या स्वरूप हो सकता है? बोलते हैं अयम अहम अस्मिति, अयम अहम अस्मिति, अहम ब्रह्मास्मि अथवा ये मैं हूं। जो बोले ना आत्मा को प्राप्त करना है तो कैसा प्राप्त करना? अप्राप्त की प्राप्ति है कि प्राप्त की प्राप्ति है? इसी को बोल दिया कि ये मैं हूं। अरे ढूंढने के लिए तो गया लेकिन ढूंढते ढूंढते इसको देखा, अरे ये तो मैं हूं। इसलिए बोल दिया पश्यति, कैसा देखता है? अयम अहम अस्मि, ये मैं हूं। आज तक तो मुझे लगा था कि ये मेरे से अलग होगा। और उसकी इस प्रकार की महिमा को सुनकर देखने के लिए प्रयास किया और देखने के लिए जो गया देखा और देखने के बाद में भक्त कहता है कि अरे इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं, यही तो मैं हूं। मन मेरे में और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, इस प्रकार दर्शन हो जाता है। अमास्मिति साक्षात जानाति, माने साक्षात अप्रोक्ष रूपेण जानाति। हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद में हमें जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कैसा है? परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान। और उसका साक्षात्कार होता है तो अप्रोक्ष ज्ञान है। अब जो साधक उस स्थिति को पहुंचता है धीरे 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 उसको उस ईश्वर का दर्शन करता है तो साक्षात दर्शन करता है, अप्रोक्ष दर्शन करता है। और अप्रोक्ष दर्शन करने के बाद ही यह स वीत शोक भवती, जो जान साक्षात जानाती, यह जो साक्षात जानता है अप्रोक्ष करता है, स यह जानाती साक्षात, मानी जो साधक उसको अप्रोक्ष रूप से जानता है वही वीत शोक होता है। ऐसा नहीं कि जानने वाला दूसरा और शोक रहित होने वाला दूसरा, ऐसा नहीं। मैंने अपने हृदय रूपी गोपा में जो अकर्तु है, महिमा से विशिष्ट है, इस प्रकार ईश्वर को जो साक्षात रूप से अप्रोक्ष रूप से अनुभव करता है सवीत शोक वो होता है, दूसरा नहीं। केन्तरी असो पश्यति, मैंने देखता है साक्षात अनुभव करता है तो किसके द्वारा देखता है? कोई उसको देखने के साधन आदि है क्या? साधन आदि है क्या, एक प्रश्न कर दे तो मूल में है धातु प्रसादात, मूल में है धातु प्रसादात, मतलब धातु प्रसादात ईश्वरस्य प्रसादात, प्रसादो नाम प्रसन्नता अर्थात परमेश्वर की प्रसन्नता। परमेश्वर की प्रसन्नता कब होती है तो बोल हमारे ऊपर चारों की कृपा होनी चाहिए, बोलते हैं गुरु कृपा है, ईश्वर कृपा है, शास्त्र कृपा है और आत्म कृपा है। चार कृपा जब हो जाती है तब आनंद ही आनंद जीवन में, तो ये बोलते हैं भगवान की कृपा। ईश्वर की कृपा जब हो जाती है तभी ही ये सब घटता है, अन्यथा नहीं। मैंने ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर की प्रसन्नता होने पर वो अपने को दिखा देंगे। मैंने हृदय रूपी गुफा में बैठे हुए हैं, जिस साधक के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, साधक ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते परेशान जब हो रहा है, जैसे छोटा बच्चा है चलते चलते थक जाता है और थकने के बाद में थोड़ा सा ऊपर हाथ करने लगता है, रोने लगता है, तो माँ देखते है कि अरे बच्चा परेशान है, इसको उठाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जो साधक ढूंढने के लिए प्रयत्न करता है, साधना करता है और उन साधन करते 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 साधनों की पूर्णता ही ईश्वर की प्राप्ति है। साधन ईश्वर की प्रसन्नता कब तक, माने जीव की साधना कब तक करनी चाहिए, जीव साधन कब तक करना चाहिए, ईश्वर की प्रसन्नता को। नाव में कब तक बैठना चाहिए, पल्ले पार जाने तक। ट्रेन में कब तक बैठना चाहिए, गंतव्य स्थान तक। अभी साधक को, मुमुक्षु को साधना कब तक करनी चाहिए, हाँ ईश्वर प्रसन्नता, ईश्वर का दर्शन न हो जाए। मैं ईश्वर का दर्शन कहिए और ईश्वर की प्रसन्नता कहिए, ये सभी एक ही है। अथवा स्व की वासना निवृत्ति न हो जाए, क्योंकि स्व की वासना निवृत्ति हो जाने के बाद में कुछ रहता ही नहीं है साधन करने के लिए। संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, तृप्ति झालिया जैसी साधने सरती आपैसी। जब तक भूख लगी हुई है तब तक सा भोजन बनाया जाता है, भोजन बनाने की तैयारी। अब खा लिया पी लिया, साधने सरतिया पैसे, अरे रख दो अभी साफ करने के लिए। तृप्ति झालिया जैसी साधने सरती आपैसी, उन साधनों का प्रयोग कब तक है, जब तक हमारी भूख नहीं मिट रही है तब तक सभी साधनों को अपनाना है, संग्रह करना है, कार्य करते रहना है। लेकिन भोजन से तृप्त हो गए, अब भोजन की सामग्री एक तरफ अब नहीं चाहिए, अब बस समाप्त हो गए। इसी प्रकार भगवान की प्रसन्नता जब तक नहीं होती है तभी तक हमारे सब साधन काम करते हैं। प्रसन्न ही परमेश्वरे, यदि भगवान प्रसन्न होता है तो क्या हो जाता है, अरे राजा प्रसन्न होता था पहला तो किसी सिपाही को मंत्री को गांव दे देते थे। आज जो आप लोगों को ये क्या है राज्य दिखाई दे, छोटे छोटे राज्य क्या है, पहले बड़े बड़े लोगों ने जागीर दे दी, उसको बोलते जागीर, अलग अलग जागीर दी, वो उनका राज्य हो गया, उनके नहीं था वो, एक सर्वा सर्वा था, उन्होंने प्रसन्न होकर ये तुम्हारे लिए इतनी गांव की जागीर। तो इसी प्रकार भगवान परमेश्वर यदि प्रसन्न होते तो क्या देते हैं, तद यातात्म्य ज्ञानम उत्पद्यते। भगवान की प्रसन्नता हो जाती है तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अर्थात वास्तविक स्वरूप का चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये ज्ञान उत्पन्न होता है। कब, भगवान की प्रसन्नता जब होती है तब, जब तक उसकी कृपा नहीं होती है तो नहीं। रावण को मंदोदरी हमेशा समझाती थी, क्या तुम्हें पता नहीं है, अरे इतना बड़ा वो कार्य करने वाला कोई सामान्य पुरुष हो सकता है क्या, वो भगवान है और सीता देवी है, उसको छोड़ देना चाहिए और उनसे आपको वैर नहीं लेना चाहिए। तो रावण बोलता है, मंदोदरी तू समझती है इतना मैं नहीं समझता हूं क्या, तुझे जितना समझ में आता है उतना मुझे नहीं आता है क्या, दशानन इसका मतलब क्या है, आनंद मणि मुख, और शास्त्री तो मुख है, दशानन चार वेद और सह शास्त्र अस्तिक शास्त्र, इनका वो ज्ञाता यही उसके मुख है, वो दशानन कोई सामान्य विद्वान नहीं है, महान विद्वान है। आज भी जैसा जय राम जी बोलते हैं उसी प्रकार जय रावण जी की बोलने वाले बहुत मिलेगा आपको, हाँ जय रावण जी को भी मिलेगी, कोई सामान्य नहीं, वो तो एक रावण हो गए, ऐसे आज हजारों रावण पड़े हुए उसके डबल मतलब कई गुणों से महान रावण है। तो बोलते क्या मैं नहीं जानता हूं क्या, बोलते फिर क्यों ऐसा, अरे बोलते मैं तुम्हें पता नहीं है, यदि वो साक्षात ईश्वर है तो कोई चिंता ही नहीं है, उसी को देखो अभी, यदि ईश्वर है तो उसके हाथ में मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। जब अंतिम बाण लगकर रावण जी शरशय्या पर शर क्या सोए है और लक्ष्मण को बोलते हैं भगवान राम, लक्ष्मण जाओ जाओ रावण के पास जाओ, वो कुछ ना कुछ बोलेगा इस समय जरूर, तुम जाओ। अब भैया की बात मानकर राम जी लक्ष्मण जी जाते हैं, बोलो। और रावण लक्ष्मण को बोल कह रहे हैं, अरे लक्ष्मण मेरी विजय हो गई क्या राम की विजय हो गई बताओ, मेरी विजय हो गई क्या राम की विजय हो गई, ये रावण पूछ रहा है लक्ष्मण को। लक्ष्मण क्या कह सकता है, हम क्या बोलेंगे? राम विजय। तो रावण बोलता है गलत बोलते हो। रावण बोलता है मेरी विजय हो गई। बोलते हैं मैं जब तक इस लंका में था भूत तब तक तो इसको आने नहीं दिया, लेकिन मेरा भौतिक शरीर समाप्त हो गया और मैं उसमें चिन्मय स्वरूप से चला गया तभी इसमें प्रवेश हो गया। वो तो ये स्थूल लंका में प्रवेश किया है लेकिन मैं तो चिन्मय राम के अयोध्या में, साकेत अविद्या, वो अविद्या भौतिक नहीं, तो राम में मैं प्रवेश किया हूं। तो राम के जैसे कृष्ण भगवान शिशुपाल आदि को मारते हैं तो मारने के बाद उनमें से ज्योति निकल के आ जाती है, इसी प्रकार रावण की भी है। तो कहने का तात्पर्य भगवान की कृपा हो जाने के बाद में हाँ अपने स्वरूप का गया। वो तो इसे है कि उनका तो एक वरदान था, एक शाप था, वो शाप क्या वरदान, तामस देव भजन होता नहीं है, स्वयं ही बोलते तुलसीदास महाराज जी। तो वह तामस से नहीं होता क्योंकि तामसिक शरीर से भजन तो होता नहीं है। तो वैर्भाव दो तरीका है ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, एक विधि रूप से भी है, एक निषेध रूप से भी है। भक्त जो सामान्य भक्त होता है विधि रूप से प्राप्त करता है, और जो बलवान होता है वो निषेध रूप से प्राप्त करता है। तो नहीं है तो नहीं है, तो वैर भाव से भी प्राप्त करता है। ये कोई नास्तिक थोड़ी है, ये इनको कोई नास्तिक नहीं बोला जाता है। नास्तिक उसको बोलते हैं